ज्ञानचिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानपुष्टि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम शरणम्। सर्वप्रथम मैं बंबई नगरी के नारकों में महापौर के अधिकारी अभी पधारे, नगर के मेयर, बड़े बड़े योग्य व्यक्ति लोग मेरे अभिनंदन के लिए आए, अभिनंदन किया कि तो मैं जानता हूँ कि जिन शब्दों के द्वारा मेरा उन्होंने अभिवादन किया मैं वैसा कुछ भी योग्य नहीं। जिन लोगों ने अभिवादन किया अपने गुण के अनुसार में वो महान है, इसलिए मुझे महान के रूप में मुझे अभिनंदित किया। किंतु मैं जानता हूँ मैं एक साधारण साधक हूँ, कुछ भजन करता हूँ और मैं जानता हूँ बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भारत में सर्वत्र और विदेशों में भी सर्वत्र भारतीय संस्कृति, विचारधारा, विशेष करके कृष्ण की भक्ति के लिए जाता हूँ और देश विदेश में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे श्रवण करते हैं। लाखों लोग अनाचार, राजनीति, कपटता, मांस खाना इत्यादि छोड़कर धीरे धीरे भजन कर रहे हैं और वो सुखी हो रहे हैं। आज विदेशों से हजारों लोग, लाखों लोग हमारे वृंदावन मथुरा में आ रहे हैं और उसे श्रवण कर रहे हैं। जो लोग स्वयं भगवान के उपदेशों का आचरण नहीं करते अपने जीवन में, गीता और भागवत के उपदेशों का आचरण नहीं करते, स्वयं भजन नहीं करते, भजन की अनुभूति नहीं है, वो अपने शब्दों के जाल से लाखों बातें कहें, भागवत, वेदांत, रामायण, पुराण वो भले ही कंठस्थ करके बोले, उनकी कोई बात को नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता। किंतु जो आचरण करने वाले व्यक्ति हैं उनकी बातों को लोग सहज रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। मैंने ये देखा है। हम लोग अभी श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहे थे, आप लोग इस चीज को गांठ बांध लेंगे। जो व्यक्ति जितना भी विद्वान हो, समाज में आदरणीय हो, धनी हो, किंतु जब तक भगवत भजन नहीं करेगा वो सुखी नहीं रह सकता। ये कदापि संभव नहीं। हमारे शास्त्रकारों ने सर्वत्र इसे बतलाया है। अभी हम लोगों ने ये भी बतलाया शास्त्रों के अनुसार में, राम नृसिंह कल्कि वामन इत्यादि भगवत अवतार हैं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि गणेश दुर्गा इत्यादि भगवान के दास दासी हैं, किंतु कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान क्यों कहा? यद्यपि चतुर्थी पंचमी षष्ठी के अष्टमी के चांद होते हैं, किंतु पूर्णिमा मुख्य है, पूर्णिमा का चांद एक ही है सर। उसी प्रकार से भगवत अवतारों ने कृष्ण की ऐसी मनोहारी लीलाएं हैं, जगत में प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सबको भी संसार के बंधन से छुटकारा देकर अपना प्रेम और ब्रज का प्रेम भी उन्हें दे देते हैं, अत्यंत सहज है। राम नारायण इत्यादि बड़े सुंदर हैं, किंतु कृष्ण में चार गुण अधिक हैं जो किसी में नहीं है। अभी मधु खंडेलवाल ने बतलाया, हमारे ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया, पहले माधुरी रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये कृष्ण में चार विशेषताएं हैं जो और किसी भी अवतार में नहीं है। प्रेम माधुरी के संबंध में हमने आप लोगों को बतलाया, कल पांच प्रकार के भक्तों में कृष्ण की प्रेम माधुरी की कैसी विशेषता है, राम का कोई भी भक्त सखा भी राम के साथ में एक पलंग पर नहीं बैठ सकता। सीता जी को भी वो आदेश दे देंगे, तुम्हारा हम प्रत्याग कर रहे हैं, और प्रत्याग कर दिया, किंतु कृष्ण को देखो, उनके पास में जो गया उसे लौटाया नहीं, जिस रूप में जो गया, यहां तक कि पुतना को भी माता बन करके गई, उसे माता के रूप में ही उसे ग्रहण कर दिया। सखा के संबंध में हमने कल ही बतलाया, प्रेम के इतने अधीन हो जाते हैं कि गोपियों के ऋणी बन जाते हैं। अभी हम लोगों वेणु गीत का के ऊपर में प्रवचन कर रहे थे। कृष्ण की बड़ी मनोहारी लीलाओं का गोपियां वर्णन कर रही हैं। वृंदावन के सरोवर तालाब स्वच्छ निर्मल पानी से लबालब भरे हुए हैं, उनमें कमल के फूल खिले हुए हैं, फौरें उन पर गुंजार कर रहे हैं, वे फौरें पुष्पों का मधु पान कर प्रमत्त हो रहे हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जुड़ रहे हैं, चारों तरफ में वृंदावन में हरियाली छाई हुई है, फूल सारे मधु से भरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में कुसुमित बनराज सूक्ष्म भृंग, चारों तरफ में फूल खिले हुए हैं और सुस्मित मैंने पागल हो रहे हैं, और कहां बैठना चाहिए कहां नहीं बैठना चाहिए उनको ज्ञान नहीं। नदियों में मधु से भरे हुए कमल खिल रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति सुसज्जित है, और कृष्ण गोचारण के लिए अपने सखाओं को लेकर, बलदेव जी को लेकर, लाखों लाखों गायों को लेकर और वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसे सुमधुर वृंदावन, और वहां जाते ही उन्होंने बंसी बजाई। हमारे शुभानंद समान शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने कल इस संक्षेप में शिव दर्शन कराया, इसलिए मैं संक्षेप में जिन विषयों को उन्होंने नहीं छुआ मैं तो एक बस इन श्लोकों पर विवेचन करके आगे बढ़ूंगा। उस समय में जब उन्होंने वेणु बजाई, उस वेणु की आवाज गोपियों ने सुनी। सीतोखर में और कृष्ण एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, गंभीर वन में चले गए बहुत दूर, किंतु गोपियों ने सुना कैसे? घर में बैठी हुई और सुन करके उसको पागल सी हो गई, अपने भावकरणों से सुना। कृष्ण की तो बंसी वृंदावन में अभी भी बज रही है, किंतु सुनेगा कौन? जिनका कान है वैसी भक्ति और प्रेम है वही ये बम्बे में भी बैठ करके वो सुन सकता है। बंसी बजाई वहां पर भी माताएं नहीं सुनी, सखा लोग नहीं सुने, नंद बाबा और जिसने गोपी थे ये नहीं सुने। सुना कौन? घर में बैठी हुई ये गोपियां तन्मय होकर के उनका चिंतन कर रही हैं, उन्होंने घर बैठे उन्होंने सुना। विक्षिप्त मनस हो, उनका मन विक्षिप्त हो गया सुनते ही, वे एक दूसरे के समीप, कृष्ण वहां नहीं है और तभी घर में उनके संबंध में बातचीत करने लगे। एक प्रिया और प्रियतम में या कोई प्रेमी व्यक्ति हो वो कहीं रहे, चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो या दूर हो, किंतु उसका चिंतन करते 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 ऐसे वो साक्षात देखता है कि मैं उसके समीप हूं, इसलिए गोपियां ऐसे ही देखती हैं और कृष्ण के गुणों का वो वर्णन करने लगी। विक्षिप्त मन तो उनका, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित, वो ऐसे तन्मय होकर के गोपियों के साथ में अपनी सहेलियों के साथ में वर्णन करने लगी कि वो विक्षिप्त पावली सी हो गई। क्या प्रलाप करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो कुछ समझ नहीं ले सकी। जो हृदय में आया उसको कहने लगी अपने मन की बात। जब कृष्ण ने वन में प्रवेश किया तो कैसे प्रवेश किया? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बृहदवास कनक कपितम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप बिंदई वृंदारण्यम शबदरमणम प्रापिशत गीत कीर्ति। लाखों लाखों गायें आगे पीछे इधर उधर, बस लाखों गायें चल रही, लाखों सखा लोग चल रहे। नंद महाराज की केवल 9 लाख गायें और विश्वानंद महाराज की 11 लाख गायें और गायों तो वो ही हैं। इतनी करोड़ों करोड़ों गायें चल रही हैं, कोई श्यामली, कोई धावली, कोई कुछ बड़ी सुंदर सुंदर, जिनके थन जमीन में लग रहे हैं, दूध उनके चुचू आ रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गायें, सखा लोग भी उनकी कृति करते हुए चल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसा मधुर रूप श्रीमद् भागवत में और कृष्ण का बस दो ही एक जगह ऐसा वर्णन किया, और वेदों में उपनिषदों में पुराणों में तो ऐसा रूप का वर्णन है ही नहीं। बरहापीड़म नटवर बहु, ओ कृष्ण का बहु कैसा है श्री? नटवर जैसे विवाह होता है किसी का और काले दूल्हे को भी सजा देते हैं, हल्दी इत्यादि उसको 7 दिन लगा करके, स्नान करके, पाउडर लगा करके, सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके सुंदर सुंदर कपड़े पहना करके भी यदि रूप नहीं होता तो भी उसमें बड़ा सुंदर दिखता है। एक सुंदरी लड़की नहीं है अभी, उसको सजा करके विवाह के समय में बहुत सुंदर कर देते हैं, मेकअप जिसको आप लोग कहते हैं। कृष्ण को मेकअप नहीं करना, उनके गहने उनके अलंकार उनको सुंदर नहीं बनाते, वो गहनों का ही अलंकारों का ही सौंदर्य बढ़ जाता है। अत्यंत सुंदर श्यामल वर्ण मेघ के समान, उनके पीताम्बर कैसे हैं मानो बिजली होती बिजली, हंसते हुए मुस्कुरा रहे हैं, अधरों पर सुंदर वेणु है। जब वेणु गायन करते हैं तो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य जितने हैं सभी मुग्ध हो जाते हैं। फलमाला पैरों तक सात रंगों की फूलों की माला उठी, और कैसे चलते हैं जैसे मतवाले हाथी जैसे चलते हैं, ऐसे मत हाथी की भांति वो चलते हैं। पैरों में 19 प्रकार के विलक्षण चिन्ह हैं जो पृथ्वी पर उभर आते हैं, जिनके देवता लोग और सब लोग वंदना करते हैं और सखा लोग उनकी वंदना करते हुए चले आ रहे हैं। गोपियां देख रही हैं भाव नेत्र से, वही हैं वो तो दूर किंतु देख रही हैं, उनका रूप का वर्णन कर रही हैं। कतियां की शक्ति अक्षमतां फलमिदं न परम विदाम, इन नेत्रों का क्या फल है जो नेत्र वाले हैं। बस हम यही एक जानते हैं कि एक ही फल है, भगवान ने प्राणी मात्र को नेत्र दिए हैं, किंतु इन नेत्रों का फल है क्या, हम यही जानती हैं कि कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं किया तो उस नेत्र का रहना बेकार है। वो मयूर पंख के समान वो नेत्र है। और कृष्ण कैसे, वो कृष्ण कैसे सखाओं के साथ में एक वन से दूसरे वन में लाखों गायों को लेकर के विचरण करते हुए चल रहे हैं। आगे आगे बलदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे कृष्ण मथुरी वेणु बजाते हुए चल रहे हैं, और उनके नेत्र मानो किसी को खोज रहे हों। आप ही लोग समझ सकते हैं कि किसको खोज रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अनुबेन जुस्तम जो पीछे हैं, आगे बलदेव जी हैं, बलदेव किस लिए आगे जा रहे हैं। एक हमारे भारतीय संस्कृति में एक जेठ होते हैं, एक पति होते हैं, एक जेठ होते हैं। जेठ के सामने, जेठ भी पिता के समान माना गया है, जेठ के सामने पति और पत्नी दोनों एक साथ में मिलकर के हंसी दिलगी और वो मिल नहीं सकते, उचित नहीं। आजकल तो भाई भाई बन जाते हैं पति और पत्नी, कोई बात नहीं, किंतु हमारे प्राचीन भारत की ये रीतियां थी। बलदेव जी जानबूझ करके आगे चले जा रहे हैं कि इनको कुछ सुयोग दें कि ये गोपियां जो पास में खड़ी हैं इनसे मिल सकें। इसलिए नंद बाबा के जो दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलदेव जा तो रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, इन दोनों के लिए नहीं कहा गया। जो आगे जा रहे हैं बलदेव जी उनके पीछे पीछे अनु नंद सुतयो अनुबेनुजुष्टम, आगे बलदेव जी जा रहे हैं, वो भी नंद बाबा के ही पुत्र हैं क्योंकि उन्होंने ही पाला है। और पीछे से कौन है, नंदनंदन बेनु बजा रहे हैं। एक तो ये अर्थ होगा, दूसरा सुतौ यहां पर गोपियां कह रही हैं जब बलदेव जी आगे चले गए और श्रीमती राधिका जी कृष्ण से मिल गई, और उस समय में विशुभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जी हैं, वो सुता हैं विशुभानु महाराज, और कृष्ण नंदनंदन हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। ये दोनों जो जा रहे हैं अनुभेद जुष्टम, कृष्ण ने आगे बंसी बजाई और राधिका जी ने उस बंसी को ले लिया और खूब बजाने लगी पीछे। उसमें कृष्ण श्रीमती राधिका के तरफ में जो देख रहे हैं, ऐसे मुखारविंद को जिसने नहीं देखा उनकी आंखों पर वज्र गिर जाए, वो आंखें बेकार हैं, अंधा रहना ही अच्छा है। सखी चलो अभी हम उसका दर्शन करें। सखी ने कोई उत्तर दिया, कैसे जा सकती है, हमारे पति ससुर सास ननद हमारी विरोधियां हैं, यदि जाएंगे तो वो देख लेंगी, ताना कसेंगी, घर से निकाल दी जाएंगी, हम लोग कैसे जा सकते हैं। इस जगत में जीने क्या ही क्या जरूरत है, यदि कृष्ण का दर्शन नहीं किया और अभी जा रहे हैं, अभी एक मिनट हम यहां से चले जाएंगे, अभी दर्शन करना होगा, इसमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं होगी। जब ही हम लोग देखेंगे दूर से भी तो उनके प्रेम भरे कटाक्ष वो खींची हमें खैंच लाएंगे, उस समय कुल धर्म लज्जा पतिव्रत धर्म इत्यादि अपने आप दूर हो जाएंगे और हम निकट से जाकर के उनको दर्शन करेंगे। इसलिए हम लोगों का भी ये क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन में यदि साधन भजन करके हम लोग कृष्ण का दर्शन कर सकें तो जीवन हमारा धन्य है। करोड़ों जन्म से हम सृष्टि स्थिति और प्रलय के समय भी हम लोग थे, न जाने क्या थे, सुअर गधे कुकर तीती और देवता अश्वरा इत्यादि हम हुए होंगे, ब्रह्मा भी हुए होंगे, किंतु आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। और इसमें इस मनुष्य जन्म में भजन नहीं कर लिया तो न जाने क्या होंगे, कुछ भी ठीक नहीं। यदि इस मनुष्य जन्म में भजन नहीं हो गया, इसलिए इस मनुष्य जन्म में ही कुछ साधन कर सकते हैं, गधे घोड़े होकर के नहीं, देवता होकर के भी नहीं कर सकते, भोगों की इतनी प्रचुरता है उसमें भजन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जन्म में अल्प आयास से भगवान का भजन कर लेना, विशेष करके नाम के प्रभाव से भी, नाम लेत भवसिंधु सुखाई, भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, भवसिंधु को सुखा करके जन्म मृत्यु को सुखा कर और कृष्ण के चरणों में प्रेम दे देता है, इतना वो प्रभावशाली है। जो मनुष्य इस जन्म में चूक गया करोड़ों जन्म में, फिर उसका उद्धार होना बड़ा भारी कठिन है। हमारे समस्त शास्त्रकारों ने कहा, गोपियां आगे बढ़ करके कर रहे हैं जो शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने बताया, गुप्त तपस किम आचरे, गुप्त तपस किम आचरे कुशलस्म वेणु दामोदरा घर सुधामति गोपिका नाम स्वं भूमते अवशिष्ट हृदनो शिष्व मुमूर्त सर्वो। कहें गोपिया करिए, सखियों देखो ये वेणु ने कैसी तपस्या की थी पूर्व जन्म में, गुप्त तपस्या में आचरेज अयम कुशलमत लोग वेणु, ये जो परम सौभाग्य वेणु है बांस का, वो भी सूखा बांस, और कृष्ण के अधरों में सत्य में विराजित होकर उनके अधरामृत का सदा पान करता है पुरुष होकर के, और हम लोगों के सामने जो गोपियों का प्रिय धन है ये कैसे पीता है पुरुष होकर के, और हम गोपी होकर के भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कृष्ण की सेवा करने का, उनसे मिलने का, और हम उनसे मिल नहीं सकते। हमारी कितनी बाधाएं हैं, हम मिल नहीं सकते।
इसने यदि कोई तपस्या की यदि हम जानती तो हम भी वैसा ही तपस्या करते, जैसे हम भी कृष्ण के अधरों पर विराजित होते। देखो तो इसका सौभाग्य देकर, ये कैसा इसका सौभाग्य, कृष्ण के अधरों पर रहकर निशेष रूप में उनके अधरामृत का पान कर ले, एक भी इतना भी नहीं छोड़ता, केवल रस ही छोड़ता है, अमृत को नहीं छोड़ता, अमृत को छोड़ते निकल जाता है और केवल पानी ही पानी रह जाता है। जैसे हंस होते हैं दूध मिले हुए पानी को पानी में से वो दूध पी लेते हैं पानी को रख देते हैं, ये बेड़ू भी ऐसे ही चतुर है। कृष्ण के अधरामृत अमृत को पी लिया और बाकी रख दिया क्या, केवल जो पानी है वही रह गया। हम तो इसको स्पर्श नहीं कर सकती। देखो इसके जो माता पिता जो हैं आज धन्य हैं, कौन है माता पिता, वृक्ष जाति, क्योंकि वृक्ष जाति में बेड़ू है ना, उसमें से बांस एक है। आज ये इनसे ऊपर से रस टपक रहे हैं माने रो रहे हैं, और नदियां जो हैं जिसको पानी से पुष्ट करके माता जैसी हैं, पुत्रों जैसा इनका पालन किया था, आज इसकी महिमा देख करके सौभाग्य देकर क्या कर रही है। फिर सब कजो कमल के फूल इत्यादि के बहाने इनके रोमांच हो रहे हैं, पुलक हो रहे हैं। देखो तो जैसे कुल की वृद्धाएं अपने घर में जिसमें बेटा नहीं हुआ और अच्छा बेटा पैदा हो गया, सभी मिल करके आज बड़ा उत्सव मनाती हैं, रोमांचित होती हैं, हर्षित होती हैं और संगीत करती हैं। ऐसे ये कुल की नारियां, ये नदियां और तालाब ये इसका सौभाग्य देख करके अपना सौभाग्य समझ कर, किंतु देखो हम लोगों का, हम सिर्फ कृष्ण से मिल कहां सकती। एक तो हमारे ससुर सास पति ननद सभी हमारे विरोधी, रात में जसोदा जी के पास में सोते हैं, मिलने का समय नहीं, सवेरे होते ही गोचारण के लिए चले गए, शाम तक गोचारण में रहे और फिर शाम को आए जसोदा जी ने गोदी में रखा, उनकी आरती उतारी और घर में लेकर के चली गई। हम मिलकर यदि हम मर करके बांस बनती और कृष्ण की वेणु बन करके कृष्ण के आधरों पर रहती, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हम बांस होकर के जन्म लेना चाहते। इस मनुष्य जन्म में हमारा कुछ भी कृष्ण का संग नहीं हो सकता, उनकी कोई सेवा नहीं कर। अरे इस वेणु की बात क्या, देखो तो धन्यास ममूढ़ मतयो हरण्य एता। अरे ये हिरणों को तो देखो, ये मूढ़ जाति की हैं, क्यों मूढ़ है, इनको ज्ञान नहीं होता कि कोई हमको मारने के लिए आया है या प्यार करने के लिए आया है, कोई बहेलिया बंसी बजाता है उस पर रिझ जाती हैं, वो समझती हैं जैसे ये हमको संगीत सुनाने आया है, बड़ा प्रेमी है, और जब ही निकट आती हैं उसे मार करके उसे खत्म कर देते हैं उसके मांस खाने के लिए, ऐसे निश्चित को भी विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ये हरणियां कैसी हैं, मूर्ख हैं, किंतु आज इनका सौभाग्य देखो, कृष्ण का वेणु सुनकर और कृष्ण का यह मधुर रूप देख करके जो तीन जगतों को एकदम आकर्षित करने वाला जो ये है कृष्ण का मुखारविंद, आज उनको देखने के लिए ये हिरणियां अपने पतियों के साथ में कृष्ण सार, जिनके कृष्ण धब्बे होते हैं काले काले, उनको कृष्ण सार कहते हैं, अर्थात जिन्होंने कृष्ण को ही सार बना लिया है, अपने पतियों के साथ आ रही हैं, मानो पति कह रहे हैं तुमको कोई डर की बात नहीं, कृष्ण के पास में चलो उनका दर्शन करो, हमारे पति कैसे हैं। यदि सुन लें, यदि कृष्ण की कोई गंध सुन लें, स्वप्न में भी कोई उनकी बात सुन लें, हमसे घर से निकाल देंगे, घर में बंद करके रखते। और ये हिरणियां कितनी धन्य है, ये उनके पति सामने आ रहे हैं पास में, चलो चलो कोई ये नहीं डर की बात नहीं, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, क्या कोई कह करके कर लेगा, और कृष्ण के सामने आकर के कृष्ण के मुखारविंद में अपने नेत्रों को देख करके प्रणय की भीख मांग रही, प्रणय समय प्रेम की भीख मांग रही, ओ हमारा धन्य, हमारा जीवन कैसा, हम कृष्ण के निकट नहीं जा सकती, बहुत दूर से देखने में भी हमारे सास ससुर विशेष करके सास और ननद ताना देती हैं, उलाना देती हैं। इसलिए यदि मर करके हम हिरणी बन करके आए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दूसरी कोई गोपी कहती है सखी इन हिरणियों की बात पहुंच जाता हो, ये जो देवियां हैं आकाश मार्ग में उन देवताओं के साथ में विमानों पर चढ़ करके विचरण करते 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 वृंदावन में आती हैं और कृष्ण की वेणु गीत को सुन करके और कृष्ण का यह रूप दर्शन करके मुग्ध हो जाती हैं और वह अपने पतियों के गोद में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, उनके केश बंधन खुल जाते हैं, उनके पुष्प वहां से गिरने लगते हैं और पति बड़े आदर के साथ में कहते हैं और तू धन्य है जो कृष्ण के पति तुम्हारी ऐसी। यदि मर करके हम ये देवताओं की पत्नियां भी होती देवियां होती तो आज हमें यह सौभाग्य होता बहुत निकट से विमानों में चढ़ करके हम कृष्ण का दर्शन करते और उनका रूप निहार। कोई शक्ति कहती है अरे इन देवियों की बात क्या, इन पशुओं को तो देखो, गायों को कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम और उनके बछड़ों को देखो, गाय चर रही थी जब ही कृष्ण की बंसी बजी कान खड़े कर सोने के समान, और इधर से आवाज आ रही है बंसी की सुंदर मधुर वेणु की और उधर ही उन्होंने कान को लगा दिया सोना बना दिया, एक बुंद टपक न जाए नीचे और कान आंख बंद कर दिया। घास चल रही थी घास उनके मुखारविंद में ही लगा हुआ, न निकल रही है और न निकाल रही, बस ऐसे ही खड़ी कान मुख खड़ा कर दिया और कानों को खोल करके मानो सारा रस वेणु का वो सब पी लेंगी और उनके बछड़ों को तो देखो दूध पी रहे थे और पीते पीते कृष्ण की बंसी यही मिली और त्यों ही कान खड़ा कर दिया उन लोगों ने भी और दूध गले में अटका रहा, न तो वो पी लिया भूख घुटने का भी समय नहीं मिला न गिर रहा है, बस कौन उसे ऐसे। यदि हम भी मर करके गायें बनते तो कृष्ण कभी तो हमें संभालते, लोरी को दुलार करते, लोरी को सहलाते, हमारे पीठ पर हाथ देते, कभी हमारा दूध भी पान कर लेते, बछड़े भी होते तो कृष्ण हमको गले से लगा लेते। आज हमारा वो सौभाग्य नहीं, यदि मरूं तो बछड़े और गायें। इसलिए कहती अरे इनकी तो बात क्या कहो, ये वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं ये विशेष करके पक्षी ये मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, साधारण नहीं है। आज अपने जालियों पर पेड़ों की जालियों पर बैठे हुए कृष्ण की बंसी की तान सुन रहे हैं, आंखें कोई बंद कर रखे हैं, मानो ध्यान लगा रहे हैं। सखी एक दूसरी कहती है कि देखो वृंदावन के पशु ये पक्षी मौन व्रत धारण करके ध्यान नहीं करते बल्कि यहाँ के कैसे हैं जैसे मयूर हैं, कृष्ण की बंसी सुनकर के नृत्य करने लगते हैं। कोई कोयल क्या करती है कुहकने लगती है, सुख पक्षी क्या करते हैं सुख पक्षी कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। तो यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो कृष्ण का गुणगान करने वाले नित्य करने वाले हरि कथा करने वाले ये ऐसे बोलने वाले हैं सब, ये वेद की साम वेद की ऋचा पर बैठ करके भागवत की डाली पर बैठ करके कृष्ण का गुणगान करने वाले हैं, ये और अथर्ववेद ऋग्वेद की डालियों पर बैठने वाले ये नहीं है। ये तो मयूर की भांति कोयल की भांति सुख और सारी की भांति ये ऋषि। यदि मर करके हम कोयल हो जाती, मर करके हम यदि मयूर हो जाती, यदि मर करके हम सुख हो जाती तो कृष्ण के कंधे पर बैठ जाते, कभी उनके हाथों पर कभी राधा जी के हाथों पर बैठ करके उनके कुंजों में बैठ करके राधा कृष्ण के गुणगान हम करते और निरंतर उनके समीप में बैठे रहती, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं। मर करके हम इस बात पर होंगे तो कोयल होंगे मोर होंगे या हम लोगों में ऐसी लालसा होती है सुन करके भी नहीं होता। ऐसी लालसा हमें हमारे हृदय में जगे जो कृष्ण के प्रति, अरे नदियों की देखो एक सखी कह रही है, अरे नदियों को तो देखो ये देखने में पानी है, नदी यमुना मन की गंगा, अरे ये सचमुच में ये देवियां हैं, साधारण नहीं है, ये गंगा सखी है यमुना सखी है। जब कृष्ण की बंसी बजती है तो जड़ चेतन हो जाता है, चेतन अचेतन जड़ हो जाता है। उस समय में यमुना तो चलने वाली है, उसका पानी एकदम जम जाता है, ऊपर का पानी तो आ रहा है और नीचे का पानी जाता नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की बंसी सुनना चाहता है, बस धारा रुद्ध हो जाती है और उसमें श्रवण पड़ जाता है। और यमुना जी कमल का उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार देने लगती है। ये तो है कृष्ण की पिंड, इसका प्रभाव। यदि मर करके हम यदि यमुना ही हो जाती तो हम अंततः उसको कोई रोकने वाला तो होता नहीं, सास ससुर तो होती नहीं, तन स्वच्छंद गति से कृष्ण के चरण में पहुंच करके उनके चरणों को पखारती और कभी उठ करके तरंगों के रूप में उनका आलिंगन कर लेती और कभी उनके चरण में पुष्प उपहार दे। फिर तो हमारा दुर्भाग्य जैसा नहीं, कोई एक और सती कर। अरे इनकी तो बात छोड़ो, देखो तो आकाश में ये विचरण करने वाले जो मेघ हैं, इनका कितना सौभाग्य है कि कृष्ण जबकि वेणु बजाते हुए अपने सखाओं के साथ में वृंदावन में विचरण करते हैं गऊओं को चराते हुए, तो धूप के समय में ये मेघ उनके ऊपर में छाया कर देते हैं, मानो इनके कृष्ण के मित्र हैं, और उस छाया करके कृष्ण को सुशीतल ऊपर से दो चार बूंदे पानी की गिराते हैं, फुहारे उन पर पड़ने लगते हैं और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं उनकी वेणु को गीत को सुन करके। यदि ये मेघों की दशा है, उनके मित्र बन करके उनकी ऐसी सेवा करते हैं, अब तो मर करके हमको मेघ ही होना है, जैसे कि उस रूप में तो हम कृष्ण से मिल सके। कोई गोपी और कहती है, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ जराग सिकुम कमेन दैता तन्मंडितेन तद दर्शन स्मर रुच तृण रूषितेन लिप्यंत आनकुच तथा। ओह हमारा जैसा दुर्भाग्य ब्रज में और पृथ्वी में कोई नहीं है, गोपी कह रहे हैं। यदि दुर्भाग्य है तो हम क्यों, हमारे पड़ोस में कृष्ण का जन्म हुआ, हम बरसाने की हैं, हम नंदगांव की बहू हैं, हम आस पास की हैं, कोई रावल की है, कोई ऊंचा गांव की है, कोई कमई करेला की, और वो कह रहे हैं देखो तो कैसा हमारा दुर्भाग्य। अरे हमसे तो कहीं लाखों गुना गोवर्धन में रहने वाली नीच जाति की, पहाड़ी जाति की जो पुलिंदी कन्याएं हैं, पहाड़ी कन्याएं हैं, वो बहुत से काली माली रूप भी और रहने पर भी आज कृष्ण के चरण में लगा हुआ कुमकुम और घासों पर जब चलते हैं और उसको ग्रहण कर करके और उसको देख करके उनके अंदर में प्रेम की उमंग आती है और उसको पानी से पोंछ कर सवेरे में दुर्गा घाट पर ओस की बूंदे पड़ी हैं और उसमें कृष्ण के चरणों का कुमकुम उसमें लग गया है, कितना सुंदर, कितना लाल और कितना उसमें सुगंध है कि उसको लेकर के अपने चेहरे पर चारों तरफ लगा लेती हैं, उनका काम दूर हो जाता है, उनका हृदय सुशीतल हो जाता है। गोपियां कहती कि देखो तो वो पुलिंदी धन्य, उसका जीवन सार्थक है, पूर्ण पुलिंदा, आज पुलिंदियों का जन्म लेना पूर्ण रूप से सार्थक है। क्यों कि कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं किया, उनसे संपर्क नहीं हुआ, उनके चरणों को स्पर्श नहीं किया, कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगा हुआ, और ये कुमकुम कहां, जो कह रहे ये गोपी उसी के अंगों का कुमकुम कृष्ण के चरणों में लगा है और उसको कृष्ण सवेरे जब चलते हैं विचार करते हैं अपने घर में लौटते हैं और उस समय में घासों पर लग जाता है, उस समय ओस बूंदों से मिलकर के वो रस जैसा हो जाता है और गोपी वो पुलिंदी कन्याएं सवेरे जाती हैं कंडे बिनने के लिए या लकड़ी बिनने के लिए और उसे देखकर तो उनको महाप्रेम उदित हो जाता है और तब उसे लगा कहा कृष्ण दूर और उनके चरणों में लगा हुआ कुमकुम आरूढ़ी कृष्ण के चरणों का कुमकुम नहीं है, गोपियों के ही है, और उस घास पर लगी और उस घास पर लगे हुए को उठाया और अपने अंगों पर लगा करके कृतकृत्य हो गई, उनका जीवन सार्थक हो गया। हमें तो ऐसा सौभाग्य नहीं यदि आज मर करके हम पुलिंदी कन्याएं हो जाती, पहाड़ी लड़कियां भी हो जाती तो आज इसमें से हमें कौन रोक सकता था, किंतु आज हम ये भी नहीं कर सकते, इसलिए मर करके पुलिंदी कन्याएं। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। यदि कोई साधक होगा इनके अनुगत्य में भजन करेगा, वृंदावन के रहने वाले बहुत से ऐसे महात्मा लोग हैं, रूप सनातन इत्यादि ऐसे ही कोटि तो उच्च कोटि के महात्मा थे जो इन गोपियों का अनुसरण करके ऐसा ही भजन करते थे, दिन रात 24 घंटे में 24 घंटा भजन करते थे, खान पीन की तरफ में कुछ भी उनका चिंता नहीं, कभी चना सूखा और गोभी उभी मना वो भी नहीं लेते, सूखा चना, और कभी रोटी कहीं किसी घर से मांग लेते वो भी भिजा करके पानी में रखते बिना नमक काली थोड़ा सा कर, रात भर सोते नहीं, कभी आध घंटा सो लिया नहीं तो वो भी नहीं, दिन रात कृष्ण के लीला कथाओं में एकदम सारा बोल रहते, बंदे रूप सनातनु रघुज बहुशी जीव गोपाल संख्या पूर्वक नाम गान नचरी कालार्थाओं नी कुतौ निद्राहार विहार काज विस्तौ अचंत दीनौ सुतौ राधा कृष्ण गुणस्पते मधुरिमान देन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातन रघुज बहु। बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े राजा लोग ये लोग वैभव अपार वैभव बेटे बेटियां सब घर में सबको छोड़ दिया, तृण के समान वृंदावन में माधुकरी लेकर के कौल लंगोटी पहन करके दिन रात भजन कर हा राधे हा कृष्ण कह करते हो संख्या पूर्वक नाम करते थे, कम से कम तो 2 लाख नाम 3 लाख हरि नाम, और दिन रात उनके कभी ग्रंथ लिखते थे पत्तों को जलाकर, उनको मच्छर भी नहीं लगते, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई राज्य भी दे तो उसे कोई संपर्क नहीं, दिन रात भजन में मग्न रहते। हम लोगों का भजन क्या है, ऐसे लोगों का भजन देकर के हम लोगों को धिक्कार आता है, काम लोगों का भजन। आज यहाँ पर हम बैठे हैं और बड़े बड़े लोग स्वागत जना रहे हैं, फूलों की माला दे रहे हैं, कहाँ भजन, खेद होना चाहिए। ऐसे ही हम भजन करें तब तो कहीं जाकर के लाखों जन्म में मिलेंगे, ऐसे कृष्ण का मिलना और गोपियों का भाव का होना सहज नहीं है। हम प्रतीक्षा के लिए बहुत कुछ कर बैठते हैं, हमारा भजन कुछ यदि एक थोड़ा सा भी होता वो भी प्रतीक्षा में बह करके न जाने कहाँ चला जाता है। भजन तो हमारा ऊपर से देखने के लिए होता है, इसलिए ऐसा भजन होना चाहिए। इस मनुष्य जीवन में ही हम गोपियों का अनुसरण करके वैसा ही हम सब कुछ कृष्ण के चरणों में निवेदन करें, उनके रूप सनातन जैसे हम भजन कर सकें। अब हम चलते हैं आगे। ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण ने अघासुर को मारा, कृष्ण को मारने के लिए निगलने के लिए आया, कंस का भेजा हुआ अनुचर सही सदान राजा मारने के लिए आया, कृष्ण ने उसके मुख में प्रवेश किया और गले में अटक गए और यहां से उसका पुरंदर रथ फट गया, उसकी आत्मा निकली और कृष्ण जब निकले तो उनके चरणों में समा गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ी आश्चर्य की बात, ऐसे दुष्ट अघासुर को भी उन्होंने मुक्ति दे दी, इनकी कुछ लीलाओं को देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कृष्ण के सखाओं को हरण करके और उनके बच्चनों को हरण करके कहीं कंदरे में छिपा दिया, देखें आप क्या करते हैं। कृष्ण ने तत्क्षणा उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही सखा बन गए, उनकी बंसी बन गए, कमलिया बन गए, और फिर जैसा जिसका स्वभाव ऐसे बन करके एक वर्ष तक शादी ली गई। एक वर्ष के बाद में बलदेव जी को, अरे ये कौन है, अरे इससे कृष्ण ही बने हुए हैं, और इसके बाद में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कृष्ण का यह लीला देखकर उनके चरणों में एकदम नतमस्तक हो गए। उसी समय एक वर्ष के अंदर में जो कृष्ण बने हुए हैं सभी लोग, उसी समय में गर्गाचार्य जी ने घोषणा की, यह वर्ष बहुत ही अच्छा है, इस वर्ष में जो लोग अपनी कन्याओं का विवाह कर देंगे वो कभी भी विधवा नहीं होंगी, उनका पति अजर अमर बनेगा, विश्व को विजय कर लेने वाला होगा, इसलिए इस वर्ष में लड़कियों की शादी कर दी जाए। यहाँ तक गर्भ में जो जिनके लड़के हैं वो बच्चे हैं वो दोनों परस्पर में ये कर ले कि आज हम दोनों की सगाई हो रही, इसके गर्भ में यदि बच्चा होगा ये इसमें बच्ची होगी या इसमें बच्ची होगी या इसका बेटा, तो भी सगाई कर लो। इसलिए ब्रज के सभी लोगों ने उसी वर्ष में अपनी लड़कियों की शादी की। अच्छा बतलाओ उस वर्ष में जिसकी शादियां हुई किसके साथ में शादी हुई, विचार करो तो कृष्ण ही बने हुए हैं, जितने सखा ग्वाल बाल सब बने हुए हैं उस समय में, सब तो कृष्ण ही बने हुए हैं, इसलिए शादी किसके साथ में हुई, कृष्ण के साथ में शादी हुई। लोगों ने समझा नहीं किंतु शादी हुई कृष्ण के साथ में, सब सबके पति वहां पर कृष्ण। अब ये कृष्ण जो राशि इत्यादि करते हैं किसके साथ में करते हैं, दूसरों के साथ में नहीं, अपनी शक्ति ये गोपियां उनकी है, ये सारी गोपियां लाजनी शक्ति के ये प्रकाश हैं, राधा जी लाजनी शक्ति हैं, ऐसा मत सोचो जो कृष्ण के अतिरिक्त और सब गोप हैं उनके साथ में उनकी शादी हुई और ये कृष्ण पर्वती हैं और